शादी के बाद आयु खुराना मेंशन में आ चुकी थी। वो आरव के साथ उसके कमरे में थी। आयु काफी थक चुकी थी और उसने ज्वेलरी भी बहुत सारी पहनी थी। आरव उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प कर रहा था। आरव को सब कुछ याद था, लेकिन जब आरव आयु की ज्वेलरी निकाल रहा था तो आयु की आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगे, जहां आरव आयु की ज्वेलरी निकालने के बजाय पहना रहा था। आयु ने अपनी आंखें बंद की तो वो दृश्य और भी साफ होने लगे। आयु ने डरकर जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। उसने आईने में आरव को देखा तो वो उसकी माथा पट्टी निकालने में उलझा हुआ था, जिसमें काफी सारी पिंस लगाई हुई थीं। अचानक आयु ने आरव का हाथ पकड़ा और थकी हुई आवाज में कहा, तुम लहने दो आरव, मैं खुद कर लूंगी। आरव ने आयु के चेहरे की तरफ देखा तो वो काफी परेशान लग रही थी। आरव उसके सामने गया और पूछा, अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो तुमसे तुम्हारी चूड़ियां तक नहीं निकाली जा रही थी और अब इतनी पिंस लगी हुई हैवी ज्वेलरी तुम खुद निकाल लोगी? मुझे ठीक नहीं लग रहा है आरव। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मुझे अजीब सा फील होने लगता है। अजीब से मेरा मतलब है जाना पहचाना सा। अभी तुम मेरी ज्वेलरी निकाल रहे थे तो मेरी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगे, जिसमें तुम मुझे ज्वेलरी पहना रहे थे, तैयार कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, आयु ने परेशान स्वर में कहा। उसने आरव से कुछ नहीं छुपाया और उसने जो देखा था वो सब उसे बता दिया। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, तुम तो इतने से ही परेशान हो गई, जबकि मैं तो पिछले इतने सालों से अजीब सपने देख रहा हूँ। जब तुम पास आई तो मेरे विजुअल्स बढ़ गए। तुम डॉक्टर नेहा को साइको कह सकती हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है। उसने मुझे वो याद दिलाया है जो मेरे लिए जानना जरूरी था। आयु को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो हैरानी से आरव की तरफ देख रही थी। आरव ने उसकी बाकी ज्वेलरी तो निकाल दी थी, लेकिन माथापट्टी अभी भी पहनी हुई थी। उसने आयु की ज्वेलरी निकालने के बजाय उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, चलो आओ, सब समझाता हूँ। आयु ने कुछ नहीं कहा, बस वो आरव का हाथ पकड़े उसके साथ जा रही थी। कुछ ही देर बाद में आरव उस कमरे में पहुंचा जहां उसने काफी सारी ड्राइंग्स बना रखी थीं। आसपास लगी हुई पिक्चर्स को देखकर आयु ने इरिटेट होकर कहा, मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बताई है, तुम हो कि इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय आधी रात को मुझे अपनी आर्ट दिखाने के लिए लेकर आए हो। दिस इज रियली अनॉइंग, मुझे पेंटिंग्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आयु वहां से जाने लगी तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पेंटिंग के पास लेकर गया। आयु उन्हें गौर से देखने लगी। उन फोटोज में आरव था और होटल साज का वो एक्सीडेंट। एक फोटो में आरव और आयु बीच पर लेटे थे तो किसी में वो दोनों डांस कर रहे थे। आखिर में आयु उस पेंटिंग तक पहुंची जहां उसकी वो तस्वीर बनी हुई थी जो उसने नेहा को दिखाने के लिए बनाई थी। अपनी मॉम छवि सिंघानिया की पार्टी में जब आरव ने आयु को पहली बार देखा था, ये उसी दिन की फोटो थी। आयु हैरानी से उस पेंटिंग को देख रही थी। उसने वो ड्रेस पहले नहीं पहनी थी, जबकि आंखें और होंठों को देखकर वो पहचान गई थी कि ये उसी की पेंटिंग है। आयु उस पर हाथ घुमाते हुए बोली, तुमने मेरी पिक्चर बनाई? मैंने किसी तरह की मास्क पार्टी कभी अटेंड नहीं की है और ऐसी ड्रेस भी नहीं पहनी है। मैं इतनी क्लासी नहीं हूं आरव, मुझे लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है, और इतना ज्यादा तैयार मैं अपनी लाइफ में पहली बार हुई हूं। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये मैं नहीं हूं। आरव उसके पास आते हुए बोला, ये तुम ही हो मिसेस खुराना, मेरी मिसेस खुराना। पता है लास्ट बर्थ में मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाया करता था। ये उस दिन की तस्वीर है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें करीब से महसूस किया था। यकीन मानो मुझे लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, पर तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। बोलते हुए आरव ने पीछे से आयु के दोनों कंधों को पकड़ा। आयु काफी देर तक बिना कुछ बोले उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसने आरव की तरफ पलटकर कहा, प्लीज आरव, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मेरा ऐसे ही सिर घूम रहा है। ऊपर से तुम्हारी बातें सुनकर दिल कर रहा है कि अपने सर को दीवार से भिड़ाऊं ताकि कुछ तो सुकून मिले। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। बाहर निकलने से पहले उसने कहा, ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। अभी तक तो सिर्फ तुम ही मुझे पागल समझ रही हो, बाद में पूरी फैमिली मुझे पागल समझने लगेगी। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारी अजीब बातें और हरकतें पागलपन वाली होती हैं मिस्टर खुराना। चिंता मत करो, तुम्हारी ये अजीब बातें सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, पर ये मत सोचना कि मुझे तुम पर यकीन हो रहा है, आयु ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर आरव का मुंह बन गया। इसके बाद आरव ने भी आयु से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो भी एक ही दिन में आयु को सब कुछ बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आरव ने आयु को बाहर चलने का इशारा किया। वो दोनों अब कमरे से बाहर आ गए थे। आरव ने आयु को बैठाकर उसकी सारी ज्वेलरी निकाल दी थी। आयु के कपड़ों के बैग्स उसके रूम तक पहुंच चुके थे। आयु ने जब दोनों सूटकेस खोलकर अपने कपड़ों को देखा तो उसने सिर पकड़ लिया। जल्दबाजी में उसे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था, तो उसके लिए शॉपिंग शालू और आशी ने ही की थी। सारी कपड़े एथनिक थे, ऐसे कपड़े आयु कभी नहीं पहनती थी। आरव चेंज करके जब कमरे में आया तो उसने देखा आयु दोनों सूटकेस खोलकर बैठी थी और उसका मुंह बना हुआ था। आरव ने आयु की तरफ देखकर कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बड़ी नींद आ रही थी, अब क्या हो गया? जल्दी से चेंज करो और सोने चलते हैं, पूरी रात क्या बैठकर बातें करनी है। आयु ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें से कोई भी कपड़े मेरे हिसाब से नहीं है, अब क्या मैं रात को सोते टाइम ये हैवी डिजाइनर सूट पहन के सोऊंगी क्या? ये पहने तो नींद आना तो दूर की बात है, इन्हें पहनने के बाद मुझे ठीक से सांस भी नहीं आएगा। पता नहीं मॉम और आशी को क्या प्रॉब्लम है, एक भी कंफर्टेबल ड्रेस नहीं डाली, ऊपर से इस शादी के जोड़े में अलग से दम घुट रहा है। आयु की हालत देखकर आरव की हंसी छूट गई। जहां लड़कियां अपनी शादी के बाद फर्स्ट वेडिंग नाइट में रेडी होकर अच्छे से घूंघट निकालकर बैठी होती हैं, वहीं आयु खुले बाल करके लहंगा फैलाकर बैठी थी। उसके दोनों दुपट्टे बेड पर फेंके हुए थे। आरव को हंसते देखकर आयु को और गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर बोली, तुमसे तो हेल्प की उम्मीद करना ही बेकार है। अरे ये सोचकर ही हेल्प कर दो कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारी वाइफ थी। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में तो तुमसे प्यार करती थी ना? हाँ बाद में तो करती थी, लेकिन पहले की तुम्हारी हरकतों को याद करूं तो हेल्प करना तो दूर की बात है, तुम्हें अपने कमरे तक में ना रखूं। आरव ने सिर हिलाकर कहा और वहां से अपने क्लोजेट एरिया में गया। उसे आयु के हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा था। आयु समझ गई थी कि आरव उसके लिए कपड़े लेने गया है। आयु उसके पीछे गई तो आरव कंफ्यूज होकर क्लोजेट के सामने खड़ा था। आरव को कंफ्यूजन में वहां खड़ा देखकर आयु ने सिर हिलाकर कहा, यहां खड़े होकर सोच क्या रहे हो? कोई फैशन शो में नहीं जाना मुझे आधी रात को। तुम साइड हटो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। बोलते हुए आयु ने आरव को साइड कर दिया और उसका एक शर्ट निकाला। वो उसे लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद में आयु आरव का शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। उसने उसके नीचे ब्लू कलर का शॉर्ट्स पहन रखा था। ये कहां से आया, पहले तो नहीं पहना था तुमने? आरव ने उसे शॉर्ट्स में देखकर हैरानी से पूछा।
मैंने लहंगे के नीचे पहना था, अब जज मत करना। मुझे मॉम से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, पहले पता होता तो टॉप भी अंदर ही पहन लेती, आयु बोली और वो बेड पर सारा सामान इधर उधर गिराकर सोने लग गई। आयु की पर्सनैलिटी इस बार बिल्कुल अलग थी, वो काफी बोल्ड थी और साथ में अनऑर्गेनाइज्ड भी। आयु को एक ही दिन में वहां इतना कंफर्टेबल देखकर आरव ने अपने मन में कहा, कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं है ये लड़की, बिना पूछे मेरा शर्ट पहन लिया और कैसे फैलकर रूम में सो रही है। अभी इसके पास जाऊंगा तो झट से भागकर खड़ी हो जाएगी, फिर देखता हूँ इसकी बोल्डनेस कहाँ जाती है। आयु को परेशान करने के लिए आरव उसके बगल में आकर लेटने लगा। तभी आयु ने आरव की तरफ देखकर कहा, साथ सोने तक तो ठीक है, लेकिन पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, रात को तुम्हारे साथ नींद में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से तुम्हारा मतलब क्या? आरव ने हैरानी से पूछा। आयु ने उसे लेटने के लिए मना भी नहीं किया, उल्टा उसे वार्निंग दे रही थी। आरव ने आयु का ये बोल्ड रूप कभी नहीं सोचा था। इस बार इस मामले में आयु आरव को भी टक्कर दे दी थी।